गान में बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान समय सार परमागम की 68वीं गाथा चलानी है। 65, 66 और 67वीं गाथा में उन्होंने जीव स्थान जीव नहीं है ऐसा कहा था और जीव स्थान के भेद गिना दिए थे जिन्हें अपन जीव समास कहते हैं। और इस 68वीं गाथा में गुण स्थान जीव नहीं है ये बता रहे हैं। जीव स्थान का अर्थ अमृतचंद्राचार्य ने वर्णादि दिया और गुण स्थान का अर्थ उन्होंने रागादि दिया। इस तरह वर्णादि और रागादि कहकर जो वो 29 प्रकार के भाव हैं वो जीव नहीं है इस तरह से उपसंहार में उन्होंने कह दिया। अभी 68वीं गाथा अपन पढ़ते हैं कि जिसमें रागादि जीव नहीं है क्योंकि इसमें लिखा तो यह है गाथा में कि गुणस्थान जीव नहीं है लेकिन उत्थानिका में लिखा है कि इससे यह नक्की हुआ कि रागादिक भाव जीव नहीं है। देखा ना उन्होंने उत्थानिका में लिख दिया कि इससे यह नक्की हुआ कि रागादिक भाव जीव नहीं है। इसके क्यों लिखा और गुणस्थान उन्होंने क्यों लिखा इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। वो गुणस्थान अंत दीपक है और राग आदि दीपक है तो इस तरह से राग से लेके गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वो सभी जीव नहीं है ये नक्की हो गया। मोहन कम मन सुदया दुमनिया दे में गुण ठाणा ते कह हवंती जीवा। मोह कर्म के उदय से होने वाले जो गुणस्थान हैं, वे नित्य ही अचेतन हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो मोहम्मद सार में तो गुणस्थानों की परिभाषा में मोह योग भवा ऐसा लिखा है कि मोह और योग के निमित्त से होने वाली और इन्हें यहां अकेला मोह कर्म के उदय से लिखा है तो ऐसा समझ लीजिए 12 गुणस्थान की बात है। 13वां और 14वां गुणस्थान वो योग के निमित्त की अपेक्षा से होता है उसको यहां पर उन्होंने गौण किया और मोह कर्म के उदय से होने वाले ही उनको कहा क्योंकि यहां मोह भाव से आत्मा को भिन्न बताना है इसलिए गुणस्थान शब्द में रागादि भाव को ही लिया जो मोह कर्म के उदय से होने वाले भाव है। तो गुणस्थान तो ऐसे भी हैं जो योग से इनके निमित्त से होते हैं तो उनकी उपेक्षा करनी है और बाकी के जो मोह कर्म के उदय से होते हैं उनकी अपेक्षा करनी है उनने इसलिए ये बात लिखी। यहां जीवस्थान को वर्णादि के प्रतिनिधि और गुणस्थान को रागादि के प्रतिनिधि के रूप में लिया है। इस प्रकार वर्णादि और रागादि में अथवा जीवस्थान और गुणस्थानों में पूर्वोक्त सभी 29 भावों को समाहित कर लिया। जिस प्रकार जो पूर्वक जो ही होते हैं उसी प्रकार पुद्गल पूर्वक पुद्गल ही होते हैं अचेतन अचेतन पूर्वक ही होते हैं। इस नियम के अनुसार मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक अचेतन मोह कर्म की प्रकृतियों के उदय पूर्वक होने से सदा पुद्गल ही हैं, अचेतन ही हैं, चेतन नहीं है जीव नहीं है। गुणस्थानों का नित्य अचेतनत्व आगम से सिद्ध है। वे गुणस्थान भेद विज्ञानियों के चैतन्य स्वभावी आत्मा में सदा ही भिन्न उपलब्ध होते हैं इसलिए भी उनका सदा अचेतनत्व सिद्ध होता है। ये सब लोगों के गले उतरे इसमें बहुत कठिनाई है गाथा में। वैसे तो सीधी सच्ची बात है उन्होंने कहा आगम में लिखा है कि ये अचेतन है। अब आगम में ऐसे वाक्य भी मिलते हैं कि जिनमें इन्हें चेतन की पर्याय कहा है हैं। फिर उसने कहा कि वेद विज्ञानियों को ये आत्मा से भिन्न उपलब्ध हैं, दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, माने इनसे भिन्न आत्मा दिखाई देता है, इसलिए हम इनको अचेतन कहते हैं। ये उनने हेतु दिया, ख्याल में, तो ये जो हेतु देकर के उनने ये बात सिद्ध की। और ये प्रश्न हरेक के चित्त में बहुत मजबूती से खड़ा होता है, होना चाहिए, खासकर मुमुक्षुओं को, क्योंकि जब मुमुक्षुओं के लिए दो द्रव्यों की भिन्नता कूट कूट के सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और दोनों के जीव में वज्र की दीवाल है और निमित्त तो कुछ करता नहीं है, ख्याल में आए ना, तो उनको ये प्रश्न होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग निमित्त को कर्ता मानते हैं और निमित्त से ही सब होता है और कर्मों के उदय से ही सब होता है, उनके लिए तो ये समय सार में भी लिखा है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके लिए तो उनके मन की बात है, लेकिन मुमुक्षुओं के गले उतरना बहुत है। और गुरुदेव श्री भी इस बात को गहराई से फीलिंग करते थे, इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव श्री का कोटेशन आपके सामने लाया हूं। मैंने पहले भी एक दफे बताया था कि समय सार अनुशीलन में अथवा प्रयत्न सार अनुशीलन में दो तरह की के प्रमाण दिए हैं। दो तरह के प्रमाण दिए हैं, एक तो वे हैं कि जैसे कि जो गैर मुमुक्षु लोग हैं, उन लोगों को जब तक आचार्यों के, प्राचीन पंडितों के प्रमाण नहीं दो, करुणानी योग के प्रमाण नहीं दो, तब तक उनके गले बात नहीं उतरती है। यदि एक डिफेक्ट उन विरोधियों में है तो एक डिफेक्ट मुमुक्षुओं में भी है, और वो ये कि जब तक गुरुदेव का कोटेशन निकाल के नहीं बताओ, इनके गले नहीं उतरती है। किसी भी आचार्य का बता दो, टोडरमल जी का बता दो, बनारसी दास का बता दो, गुरुदेव का बताओ तो इनके गले उतरती है। जैसे मैंने धर्म के दर्शन किताब में लिखा है कि शत्रुओं की एक आदत होती है कि जो वो दुर्गुण हम में नहीं है उनको भी दुनिया में कहते फिरते हैं, और जो थोड़े बहुत हैं उन्हें बड़ा चढ़ाकर कहना तो उनका धर्म ही है। ऐसी मित्रों में भी एक खोटी आदत होती है, जो गुण हम में नहीं है उनका भी बखान करते हैं, और थोड़े हों तो उन्हें बड़ा बड़ा कर बखान करते हैं। इसलिए दोनों ही खतरनाक हैं, एक क्रोध के निमित्त हैं और दूसरे मान के निमित्त हैं, और कसाएं तो दोनों ही हैं। यदि बड़ा चढ़ाकर गुणों की प्रशंसा करेंगे तो मान पैदा होगा, और यदि निंदा करेंगे तो क्रोध पैदा होगा। तो जैसे वे शत्रु और मित्र दोनों ही समान है ना, ऐसे यहां भी है, ये है दिक्कत है। ये किसी का गुण नहीं माना जा सकता, है तो कमी, लेकिन उस कमी को निकालना इतना हमारे हाथ में नहीं है, और हम दुनिया की कमी निकालें इसकी बजाय हम तो जो समझाना चाहते हैं वो बात आपके गले तक कैसे पहुंचे हम तो उसकी चिंता करते हैं। इसलिए जो ऐसी बात होती है कि गुरुदेव के कोटेशन के बिना आपके गले नहीं उतरेगी, वो कोटेशन हमने यहां लाके दिए हैं, क्योंकि अभी निमित्त की मुख्यता से कथन है ना कि मोह कर्म के उदय से जो राग भाव हुए हैं तो उनके मोह कर्म है, वो जड़ है, आप समझे ना। तो गुरुदेव का मैं कोटेशन देता हूं, देखो यहां कहते हैं कि ये वर्णादि सभी भाव पुद्गल के ही हैं, इन्हें पुद्गल की ही रचना जानो। अरे समय सार का कथन है, निमित्त की मुख्यता से लोग कहते हैं ना, समय सार में निमित्त का कथन नहीं है। यह कथन किस अपेक्षा से किया है, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि राग की रचना तो पर्याय में अपने विपरीत पुरुषार्थ से होती है, इसलिए राग का परिणमन स्वयं जीव का है, उसमें कर्म निमित्त है। कर्म निमित्त है अवश्य, किंतु निमित्त से राग नहीं हुआ। यह भी एक सिद्धांत है, किंतु यहां दूसरे सिद्धांत की अपेक्षा से कहा है। मैंने एक ये सिद्धांत है, हमने पहले जो कहा है उस बात को काट कर नहीं, उसे पूरा समझ करके और एक तरफ गौण रखो, क्योंकि अब दूसरी अपेक्षा की बात चल रही है ना। राग का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा में अकर्ता नाम का ये गुण है, इस कारण राग करने का उसका स्वभाव ही नहीं है, इसलिए राग की रचना पुद्गल द्रव्य से होती है ऐसा कहा है। पुद्गल कारण है और राग उसका कार्य है, क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं। देखो यहां वस्तु के स्वभाव अर्थात चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि कराना है, तो इस दृष्टि से ये बात कही है। मैंने एक कल बात कही थी कि हम तो आपको अपेक्षा बता सकते हैं, ऐसा क्यों कह दिया, तो इसका जवाब अपेक्षा, इस अपेक्षा कहा है। अब आप नहीं माने, झगड़े, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, तो हमने बता दिया ना, वहां ये अपेक्षा थी यहां ये अपेक्षा थी है? यहां जीव उसे कहा है जो अखंड अभेद एक रूप चैतन्य घन स्वरूप है। इस चैतन्य घन स्वरूप आत्मा की दृष्टि करने से ही सम्यक दर्शन अर्थात धर्म का प्रथम सोपान प्रकट होता है। ऐसे शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए यहाँ राग रंग राग और भेद से भावों को पुद्गल की ही रचना है ऐसा कहा है। अब क्या गजब है कि वहां राग आत्मा का है, ये भी तेरी अपराध की स्वीकृति के लिए ये बात कहाई, स्वीकार कराई है। नहीं है तो फिर जरूरत ही क्या है सारे मोक्ष मार्ग की। यदि नहीं मानेंगे तो संसार का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और संसार मोक्ष संसार पूर्वक होता है तो मोक्ष का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और संसार का अभाव होगा तो संसार के कारण का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और मोक्ष का अभाव होगा तो मोक्ष के कारण का अभाव सिद्ध हो जाएगा। और ये चार तत्व है ना, इन चारों में सात तत्व आ जाते हैं। तत्व चार होते हैं ये भी कभी सुना है आपने? सात तत्व तो सुने हैं और नौ तत्व तो सुने हैं, लेकिन तत्व चार होते हैं ये सुने कभी? मैं उनके नाम बताता हूं और आप अपने मन में उनकी हां और ना करना, मैं झूठ भी बोल सकता हूं, घबराना नहीं। तत्व चार होते हैं, संसार तत्व और संसार का कारण तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्ष का कारण तत्व, सही है? अरे भाई ये सम्बन्त पत्र में लिखे हैं, आप तो नहीं मानसा अष्टाश्री वगैरह में हैं, और समय समय सार में भी हैं, कुछ प्रयत्न सार में अंत में जो पंचरत्न की गाथाएं है ना, उसमें एक संसार तत्व, एक संसार का कारण तत्व, एक मोक्ष तत्व, उसमें वहां भी है। ये भी एक अपेक्षा है। तो संसार तत्व में जीव जीव का संयोग दोनों आ गया, संसार के कारण तत्व में आश्रय बंध आ गया, पुण्य पाप आ गए, मोक्ष तत्व में मोक्ष आ गया और मोक्ष के कारण तत्व में समय नजर आ गए, इसलिए सात तत्व या नौ ही तत्व इन चार में शामिल हो जाते हैं। तो अब अपेक्षा जहां अलग अलग है उसकी अपेक्षा से हम बात करते हैं, तो वो चार तत्व क्यों कहे? जैसे मैंने अभी कहा ना कि ना संसार सिद्ध होगा ना मोक्ष सिद्ध होगा, और संसार के सिद्ध नहीं होगा तो संसार का कारण नहीं होगा, और मोक्ष सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष का कारण सिद्ध नहीं होगा। तो इस चार तत्व सिद्ध नहीं हुए तो सात और नौ तत्व भी सिद्ध नहीं होंगे क्या, यदि ये नहीं मानोगे राग आदि जीव की पर्याय है तो। अब यहां कहते हैं यहां अपेक्षा जुदी है, एक त्रिकाली ध्रुव को एक तरफ रख करके और बाकी सबको पर में डालना है, तो निमित्त की अपेक्षा जो निमित्त के साथ और अनुभव वितरक घटा रहे हैं और निमित्त के साथ में अनुभव वितरक व्याप्ति बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो उसका उसके ही साथ है, जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ जीव उसे कहा है जो अभेद अखंड एक स्वरूप चैतन्य घन स्वरूप है। इस चैतन्य घन स्वरूप आत्मा की दृष्टि करने से ही सम्यक दर्शन अर्थात धर्म का प्रथम सोपान प्रकट होता है। ऐसे शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए यहाँ रंग राग और भेद के भावों को पुद्गल की ही रचना है ऐसा कहा है। यहाँ तो आत्मद्रव्य का पूर्ण स्वभाव बताना है, परंतु जब पर्याय की बात हो तब पर्याय में जीव स्वयं राग करता है और पुद्गल तो उसमें निमित्त मात्र है ऐसा कहने में आता है। निमित्त से क्यों? पुद्गल पे ही पुद्गल से द्वेष करने लगता है, इसने हमें राग करा दिया। अकेला निमित्त पुद्गल कर्म का उदय थोड़ी है, वो तो अंतरंग निमित्त है, फिर बहिरंग निमित्त जो आमने सामने वाले गालियां देने वाले गुस्सा कराने में निमित्त हो जाएंगे, अनुकूलता बरतने वाले राग में निमित्त हो जाएंगे, तो फिर हम उनसे राग द्वेष करने लगेंगे। वो समस्या खड़ी होती है तो कहते भैया कि तेरा भला बुरा तेरे कारण हुआ है, निमित्त ने कुछ नहीं किया है, वहां ये बात बताएंगे। और उसमें सत्य कौन है? कभी दोनों ही सत्य हैं अपेक्षा से। देखो आत्मा राग का स्वभाव राग रूप नहीं है, ये सत्य नहीं है, और आत्मा राग की पर्याय नहीं है क्या? ये सत्य है। आत्मा राग की पर्याय, राग आत्मा की पर्याय है ना, आत्मा में पैदा हुआ है क्या? नहीं। तो ये दोनों परम सत्य हैं, और दोनों परम सत्यों का सही जगह उपयोग आप करोगे तो उसका लाभ आप उठा सकोगे। जैसे मैंने कल या परसों कहा था ना कि हम एक को कभी एक को सत्य कहते हैं, दूसरे को झूठ कहने की परंपरा भी है। लेकिन मैंने कहा था एक त्रैकालिक सत्य है और एक तात्कालिक सत्य है। बोलते कि नहीं बोलते? तो किसी ने किसी के लड़के को गोद लिया, अब जिस माँ बाप ने वो गोद लिया वे उसके माँ बाप हैं कि नहीं? बता, बोलो क्या कह, बताओ। यदि वे उसके माँ बाप हैं तो ये असली खड़े हैं, ये क्यों नहीं? और दो माँ बाप एक हो सकते हैं किसी के? दो माँ कदाचित आप मान भी लो, एक असली एक सौतेली, दो बाप तो कोई नहीं मान सकता। किसी से दो बाप की कहो तो गाली समझी जाती है क्यों? और अब आप कहते हो कि वो जो जिनने गोद लिया है वो उनका बच्चा है कि नहीं है? है तो उनका है कि इनका है? अरे भारतीय कानून और संविधान में इतना है कि सारी उसकी प्रॉपर्टी, सारा उत्तराधिकार उसको मिलने वाला है। तुम कहते हो बच्चा ही नहीं है, तो सारा अरबों रुपया बिना बच्चा के मुफ्त में ही मिल जाएंगे है? तो अब उसके बीच में कुछ है कि नहीं है? गोद के बच्चे को बच्चा कहना या नहीं कहना, दोनों अपेक्षाएं हैं। यदि वो वास्तव में बच्चा है तो गोद का क्यों बोलते हो? क्यों? और बच्चा नहीं है तो उत्तराधिकार में करोड़ों की संपत्ति क्यों मिल गई? तो ऐसे ही एक कहते हैं यहां पर दोनों अपेक्षाएं हैं। तो ये जो यहां बात चल रही है उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भिन्न बताना है। तो उन्होंने दो ही हमने दुनिया को बांटा, हमने आत्मा को चेतन कहा तो सारे जगत को अचेतन कहा, आत्मा को जीव कहा तो सारे जगत को अजीव कहा। आत्मा और देह के रूप में दो भाग किए तो आत्मा को आत्मा कहा तो देह में सारा संसार हमने गर्भित कर लिया, स्त्री पुत्र मकान राजा नगर देश गांव। और ऐसा है, बार बार ये बातें थोड़ी कही जाएंगी, हम एक दफे तुम्हें को वो बता देंगे विधि, और वो विधि तुम समझ लो तो चाबी तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। ये ऐसी बात है। तो एक बच्चे को 10 बजे स्कूल जाना है, अब 7 बजे से बेचारे को चिंता हो रही कि 10 ना बज गए, 10 तो नहीं बज गए, 10 तो नहीं बज गए, नहीं तो मास्टर जी बहुत नाराज होंगे। क्यों? तो 7 बजे पापा के पास, पापा अभी कितने बजे? कि बेटा अभी तो 7 बजे है, ये स्कूल जाना है। कितने बजे? 10 बजे। फिर आधे घंटे बाद आया, पापा 10 बज गए। नहीं अभी तो 7:30 बजे है। फिर 8 घंटे बाद आया, बार बार आके पूछता तो बाप भी परेशान होता है, काम में डिस्टर्ब होता है ना, और बेटा तो परेशान हो ही रहा है। तो बाप उसे बतावे कि अभी कितने बजे हैं, बेटा तो यही पूछता है ना। इससे बढ़िया ये है ना कि बाप कहे कि बेटा 2 मिनट में खड़ा रहे, अब मैं तेरे को घड़ी देखना सिखा देता हूं। ये छोटी सुई है ना, 1 घंटों की है। ये बड़ी सुई है ना, 1 मिनटों की है। इससे तू निर्णय कर लेना, तेरा झंझट भी खत्म हो, मेरा भी तेरा, क्योंकि 7 बजे से ही तेरे को आकुलता हो रही है। यदि तू घड़ी देखना जानता होगा तो वो आकुलता तेरी खत्म हो जाएगी, कम तो हो ही जाएगी। जब भी तेरे को विकल्प आएगा ऐसा देख लेगा, और मेरी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जिनवाणी का अर्थ कैसे करना वो विधि आप सीख लो, तो तुम्हारी झंझट भी खत्म और हमारी झंझट भी खत्म। नहीं तो तुम्हारे पास कदम कदम पर प्रश्न खड़े होंगे, वहां तो ऐसा लिखा है, यहां तो ऐसा लिखा है, यहां तो ऐसा कह रहे थे, एक पंडित जी तो ऐसा कह रहे थे, दूसरे पंडित जी तो ऐसा कह रहे थे, समय सार में तो ऐसा लिखा है, प्रश्न सार में तो ऐसा लिखा है, पंडित टोडोमल जी का जो श्रोता है उसमें तो एक ही बस कमी है, वो यही बताता है कि यहां ऐसा लिखा वहां ऐसा लिखा, और वो बेचारे अपेक्षा बता बता कर के काम चलाते हैं। इसलिए कहते हैं एक दफे की झंझट निपटाओ ना, कि सब उस शास्त्र करने के अर्थ करने की पद्धति समझ लो। तो सोनगढ़ से एक किताब छपी थी, अपने नवी चंदी पाटनी लिखी थी ना, शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, वो मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अध्याय और 8वें अध्याय के आधार पर ही थी। टोडोमल जी ने 2 अध्याय उसी के लिए लिख दिए कि पहले तुम अच्छी तरह से, मुझसे कोई पूछता कि मैं सबसे पहले क्या 100 अध्याय करूं, तो कहते हैं मोक्षमा प्रकाशक का 7वां 8वां अध्याय। मोक्षमा प्रकाशक भी नहीं कहता, मैं 7वां 8वां अध्याय बोलता हूं। क्यों? कि उन्हें पहले ही उठा करके और 5वां अध्याय उठा लिया है? और भाग्य से वो अजय नहीं हुआ तो फिर द्वारा छुए गए नहीं। 7वां अध्याय उठा लिया और 20 पंक्ति हुआ तो फिर कभी छुएगा ही नहीं। क्या तो 7वां 8वां अध्याय पढ़ेगा तो जैन शास्त्रों के जो अर्थ करने की पद्धति है उसे ख्याल में आ जाएगी, तो सब जगह सारा अर्थ सही कर लेगा। ये टोडोमल जी की ओरिजिनलिटी है, जो महावीर भगवान से लेकर टोडोमल जी के जमाने तक करीब 2200 वर्ष तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे, आचार्य टोडोमल जी ने भी तो शास्त्रों में से, आचार्य के शास्त्रों में से ही निकाली है, लेकिन उनका ये ध्यान गया कि सारे लोगों में इस तरह की का विकल्प है और उसे हमको गहराई से ये लोगों के सामने रखना चाहिए, तो ये बातें उसकी समझ में आएंगी, अन्यथा उसकी समझ में नहीं आएंगी। देखो तो इन्होंने लिखा ना, गुणस्थान नित्य अचेतन है। क्यों? ये पुद्गल कर्म के उदय से पैदा हुए हैं। अब वो कहते हैं कि कहां लिखा है, कि आगम में लिखा है, और वेद विज्ञानियों को अंदर में उनसे भिन्न भगवान आत्मा अनुभव में आता है, ये उन्होंने ये अनुमान बताया, और ये प्रत्यक्ष भी समझ लो, तीन ही प्रमाण माने जाते हैं मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, तीनों उन्होंने पेश किए। अब वो कहते हैं कि जैसे हमने गुणस्थान पर अथवा राग पर अथवा वर्ण पर घटित किया, आप ऐसी 29 गाथाएं बनाओ अथवा 29 बोल बनाओ। क्या? यह गुणस्थानों का नित्य चेतन तो आगम से सिद्ध है, लिखा ना, तो इसमें लिखो राग का नित्य चेतन तो आगम से सिद्ध है, क्योंकि वे राग आदि भेद विज्ञानियों के चेतन स्वाभाविक आत्मा से सदैव भिन्न उपलब्ध होते हैं। बना सकते हो एक वाक्य से बदल के 29 भाव बनाओ। आचार्यों ने कई जगह बना बना करके बताए हैं, और गुरुदेव ने तो बना बना के घटित करके बताए हैं। मैंने भी समय अनुशीलन में कई जगह ऐसे घटित घटित करके बताए हैं, जैसे उसमें आता ना राग आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। द्वेष आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। पुण्य आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। वर्ण आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसे अपन लगाओ तो बना सकते हैं। जरा थोड़ा विवेक लगाएं कि आचार्यों ने क्यों नहीं बना के बता दिया कि थोड़ा तो काम तुम पे भी छोड़ा। उनके पास इतना समय कहाँ था? वे अपने आत्मा का कल्याण में जाते कि नहीं जाते, कि तुम्हारे ही लिए लगे रहते? कि उनके पास समय नहीं था तो हम क्या निठल्ले हैं जो ये लगाते बैठे? हमें कोई काम नहीं है? यहां नहीं है। उन्हें जो काम था उसे छोड़कर वे इसमें नहीं लग सकते थे। और तुम जिस काम में उलझे हो उसे छोड़कर इसमें लगना, उसे छोड़ने के लिए इसमें लगना बहुत जरूरी है। करना क्या है? तुम्हारे पास काय के लिए समय नहीं है? क्या कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें समय नहीं है? यह एक सही घटना है, अपने विद्यालय की है। विद्यार्थियों को, पुराने विद्यार्थियों को मालूम होगी, एक आदमी विद्यार्थी अपने यहां भर्ती यहां आया था पढ़ने के लिए। और जब वो न्याय व्याकरण पढ़ाने पढ़ाई की बात आई ना, पहले हम इसके लिए आए हैं यहां, हमें नहीं पढ़ना, हम तो आत्मा समझने आए थे, आत्मा के लिए पढ़ने आए थे, चला गया। वहां जाकर के फिर गुड़ की दुकान पर बैठ गया, वो गुड़ बेचने लग गया। मैंने कहा न्याय व्याकरण पढ़ना वास्तव में ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन गुड़ बेचने से ज्यादा उपयोगी है। तुमने क्या छोड़ के और क्या किया ये बताओ। वहां तो एक साल न्याय व्याकरण थोड़ा पढ़ते और बाद में प्योर अध्यात्म पढ़ने के लिए ही तुम्हारा जीवन लगने वाला था। और जैसे जैसे विद्वान तैयार हुए हैं वैसे ही तुम भी तैयार होने वाले थे। तो यहां चार दिन में ही एकदम उसे हे दिखने लगते हैं वो, जिनके लिए टोडरमल जी जैसे महापंडित ने कहा कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य चाहिए। कहा कि नहीं कहा? और उसके बदले में जाकर क्या कर रहा है उसका उसे पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि तुम बैठ बैठ के लगाओ इनको, 21 गाथाएं बनाओ। जहां जहां है ना, जैसे यदि जीवो न शरीरम, तो ऐसे बनाओ यदि जीवो न रागादि। मतलब कहने का मतलब है जहां जहां ऐसे प्रसंग हैं और जितनी जितनी चीजें हैं उन सब पर घटित करो वे तर्क और युक्तियां लगा करके, क्योंकि हमें तो वही चिंतन करना है ना। देखो कहीं कहीं रिपीटिशन दोष होता है और कहीं कहीं रिपीटिशन गुण होता है। सिद्ध चक्र विधान की एक पंक्ति आती है। सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध भगवान के अनंत गुणों की चर्चा करनी थी। अब अनंत गुण तो किसी को आते नहीं है, तो उनको पहले दिन 8 गुण, दूसरे दिन 16 गुण, तीसरे दिन 32 गुण। अब ये समस्या खड़ी होगी 64 गुण कहां से लाएं, 128 गुण कहां से लाएं, 256 कहां से लाएं, क्यों 512 कहां से लाएं? क्यों थावड़ा जी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, आप बताओ आप ला सकते हो तो। उन्होंने कह दी साधु सम सिद्ध अकम्प विराजें, तो 100 अरग साधुओं के, जब सिद्धों की पूजा आ रही साधुओं को क्या बोले आए बीच में, 100 अरग उपाध्यायों के, 100 आचार्यों के, क्योंकि सिद्धों के 500 हमारी बस की नहीं है। तो पंच परमेश्वरियों में कुछ सिद्ध बनने वालों को लगा करके ठोक दिए। क्यों? अब वही 8 जयमाला लिखने थी, अब उसमें वही बातें बार बार आवे। तो उन्होंने कहा अनंत गुण है तो रिपीटेशन क्यों करते हो, तो हमें नहीं आते तो फिर करते ही क्यों, मत करो। तो उन्होंने कहा बार बार थुति करण में नहीं पुनरुक्ति भणंत, बार बार स्तुति करने में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता, ऐसे ही अध्यात्म में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता, ऐसे ही नवोकार मंत्र के जाप में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता, समझ गया ना। पर आप एक उदाहरण आज दे दो समझाने के लिए, फिर वही कल दो, फिर वही परसों दो, फिर वही नरसों दो, तो फिर जनता उखड़ जाएगी। क्यों भर जाएगी? नहीं भर जाएगी तो नहीं, ये नहीं चलेगा साहब। अगर हमारे समय की भी कोई कीमत है, लेकिन नमो कामन तो हमने रोजाना 9 दफे बुलवाया था, तो किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया था। अरे इतना विवेक हमें है कि क्या की पुनरुक्ति करना और किसकी पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, जितनी बार किसी पुनरुक्ति करो उतनी बार अच्छी है। ऐसे देखिए, ज्ञान और ध्यान ये बिल्कुल एक दूसरे के सहयोगी हैं। पहली दफे किसी चीज को जानना उसका नाम ज्ञान है, फिर दूसरे तीसरे समय में उसे लगातार जानते रहना उसका नाम ध्यान है। जानना वो ज्ञान है और जानते रहना वो ध्यान है। बोलो और ध्यान में क्या होता? आप कोशिश करते हो कभी कभी तो क्या करते हो कि भाई एक आत्मा पहले जाना और बस उसी को जानते रहे, यही कोशिश करते हो ना, फिर उपयोग बाहर भटक जाता है तो फिर लाला के कोशिश करते हो। अब देखिए, ज्ञान में पुनरुक्ति दोष है और ध्यान में पुनरुक्ति गुण है। अरे पुनरुक्ति तो ध्यान में गुण नहीं, स्वरूप है। और वही की वही बात कल कही थी, वही आज कहूं, वही फिर कल कहूं, तो आप नाराज हो जाएंगे। ज्ञान देखिए, ज्ञान और ध्यान एक ही चीज है ना। मुक्ति के मार्ग में दोनों का स्थान है क्या? नहीं, संबंध ज्ञान तरत्राणी मोक्ष मार्ग, तरत्र माने ध्यान। अब एक में पुनरुक्ति दोष है और एक में पुनरुक्ति गुण है। अब विवेक से काम करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये रागादि भाव जीव नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। तर ही को जीवा इति चेत, गाथाएं तो खत्म हो गई, फिर भी उन्होंने एक प्रश्न किया कि अब तुम बताओ कि जीव क्या है। आचार्य अमृतचंद ने खुद टीका में, क्योंकि वो खुद जीव का स्वरूप एक दफे फिर बताना चाहते हैं सबको, यद्यपि 49वीं गाथा में बताया है ना, अनाद्यनंत मचलम ससंवेद में दुष्फुटम जीवा स्वयं तु चैतन्य मुच्चकटकायते स्वानुभूति में जो प्रकट अतर अनादि अनंत। स्वयं जीव चेतन जगमगाते अत्यंत, ये जगमगा रहा है एकदम। चैतन्य उच्चई चकचकाए थे, ये बहुत मर्म है इसमें। चैतन्य तो चैतन्य है ही आत्मा, उच्चई चकचकाए थे एकदम चकाचक। अपन बोलते चकाचक सूट, एकदम चकाचौंध हो रही है, चकाचक हो रहा है एकदम उच्च रूप में। ऐसा भगवान आत्मा एकदम सूर्य जैसा आकाश में चकचका रहा है, दिखाई दे रहा है, अत्यंत प्रकाशमान वस्तु है। तो कहते वो तो गुप्त है, क्योंकि दिखाई नहीं देती, रहस्य नहीं जाता है, समझ में नहीं आता है। क्यों? जगमगात अत्यंत, वो अत्यंत जगमगा रहा है भगवान आत्मा तो, कि हमें दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करें? क्यों हमें तो दिखाई नहीं देता है, हमने तो बहुत खोज कोशिश की, आंखें फाड़ फाड़ के देखा, कि वो आंखें फाड़ फाड़ के देखने की चीज नहीं है ना, वो आंखें बंद करके देखने की चीज है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, भर्तृहरि ने कहा है, आपको तो सुना दूं कि नो लू को अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् पत्रम नैव यदा करीत बिटपे दोषो बसंतस्य किम्। क्या अर्थ है इसका? उल्लू को यदि दिन में दिखाई नहीं देता है, इसमें सूरज की क्या गलती है? क्या बिल्कुल इन्हीं शब्दों में लिखा है, नो लू को, उल्लू को माने उल्लू, नो लू को अवलोक्यते, दिखाई नहीं देता है। क्या दिवा माने दिन में, सूर्य दिन में 12 बजे दिखाई नहीं देता है उल्लू को, तो इसमें सूरज की क्या गलती है? ये तो उल्लू की गलती है ना। क्यों ऐसे ही पत्रम नहीं यदा किरीट बिट पे 200 बसंतस्य किम, एक करील नाम का वृक्ष होता है, ये मथुरा वृंदावन में होता है, देखा ना, जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, ना फल लगते हैं ना फूल लगते हैं, बस कांटे ही कांटे होते हैं। कहते बसंत ऋतु आती है और उसमें पत्ते नहीं उग लगते हैं, किरीट नाम के बिटप में यदि पत्ते नहीं लगते हैं तो बसंतस्य किम दोषम, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? कहां लिखा, कहीं पढ़ा है ये किरीट बिटप के बारे में कि उसमें पत्ते नहीं होते? क्यों कमलचंदी पढ़ा, रस खान को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हैं? कोटक ही कल धौत कोई धाम करी लेकी कुंजन ऊपर बारों, या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजदारों। इस संबंध भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब ये संबंध भावना क्या, उसका उत्कृष्ट उदाहरण क्या, बहुत मुश्किल है। माने हमें जिससे प्यार होता है उसका जिस चीज से संबंध रहा हो हम उससे भी ज्यादा प्यार उससे कहते हैं। गुरुदेव के चश्मे को हम संभाल के रखते हैं ना, क्यों? जितना गुरुदेव को नहीं संभाला उतना गुरुदेव के चश्मे को संभाल के रखते हैं, उनके चद्रा को संभाल के रखते हैं, जो शास्त्र वो पढ़ते थे जिनने निशान लगाए उन्हें संभाल के रखते हैं ना। तो ये उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा और भक्ति है, उसकी बोली लगाए गुरुदेव की चश्मा की तो लाखों में बिक जाए, होता कि नहीं होता? इसे बोलते संबंध भावना। श्री कृष्ण जिस कंबल को ओढ़ते थे, जिस करील की कुंजों में उस, वो जब रहते थे ना नंद बाबा के यहां, तो जंगल में खेलते थे तो वहां तो बेही पेड़ थे, तो उनके अंदर जाके छुपते थे खेल खेल में। तो वो रसखान कभी कहता है कोटिक हु कल धौत के धाम, सैकड़ों सोने के राजमहल करील की कुंजन ऊपर बारों, उन करील की कुंजों के ऊपर निछावर कर सकता हूं। कोई कहेगा ये सोना का राजमहल है, बोलो तुम्हें ये चाहिए कि ये करील के कुंज है, कहां रहोगे बोलो? कि मैं करील के कुंज में रहना पसंद करूंगा, इस सोने के राजमहल में रहना। कोट के हु कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों, और या लटुकी अरु कामरिया पर और राज तिहूं पुर को रजदार। जब जंगल में गाय चराने जाते थे ना श्री कृष्ण भगवान, तो एक हाथ में लकड़ी लिए रहती थी और कंधे पे कंबल। तो कोई कहे कि तीन लोक का राज्य तुम्हें दे रहे, छह खंड का नहीं, तीन लोक का राज्य, और एक तरफ है वो लटकी वो लकड़ी और वो कंबल, बोलो क्या चाहिए दो में से एक? क्या एक तरफ राम और एक तरफ गांव, एक तरफ मैं अकेला, एक तरफ सारी सेना शहद कौरव, क्या चाहिए? तो वो कहता है कभी क्या, तो इस लकड़ी और कंबल पर मैं तीन लोक के राज्य को ठुकरा सकता हूं, तीन लोक का राजा मुझे नहीं बनना है, बस ये लकड़ी दे दो ये कंबल दे दो और कुंज की करील के कुंजों में जाके रहूंगा, बस ये लकड़ी के साथ में और कंबल और वहां रहूंगा, और मुझे सोने के राजमहल नहीं चाहिए। क्यों? कि ये श्री कृष्ण के समागम का लाभ इन्हें मिला था, इसे बोलते संबंध भावना। क्या इसलिए कहते हैं कि भाई ये आत्मा भगवान, आत्मा तो ऐसा चकचकायमान है, सारे ज्ञानियों को दिखाई देता है। वो आता है गाथा में, हमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हमारे अनुभव में नृत्य आ रहा है और अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता है, तो इसमें आत्मा का क्या दोष है? तो आत्मा छिपा है, सूक्ष्म है, बारीक है, और उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो दिखाई दे, हम क्या करें। हम उसे दोष देते हैं कि भैया उसे दोष नहीं है, तेरी दृष्टि की कमजोरी है, तेरे में सर्वस्व समर्पण आत्मा के देखने के लिए जैसा सर्वस्व समर्पण चाहिए, समझे ना, आत्मा के दर्शन के लिए जैसा सर्वस्व समर्पण चाहिए तैसा सर्वस्व समर्पण तेरे में नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा के दर्शन तेरे को नहीं होते हैं, क्यों कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाता है, सब जगह से उलझे नहीं, इसलिए हम तो एक कहते हैं कि एक तरफ सारा जगत, एक तरफ भगवान आत्मा, इसलिए हमने गुण स्थान को, मायणा स्थान को, जो कुछ भी है उन सब को अचेतन में, पुद्गल में, जड़ में सब डाल दिया, और एक चैतन्य भगवान आत्मा अनादि अनंत और अचल तीन विशेषण दिए हैं। माने अनादि क्यों, क्योंकि इनका जन्म नहीं हुआ, अनादि का जन्म नहीं होता, जन्म जिसका होता वो अनादि नहीं होता। अनंत क्यों, क्योंकि इसका मरण नहीं होगा। अचल क्यों, क्योंकि अनंत गुणात्मक है, ये कभी कुछ गुण कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, अचल का मतलब ऐसा ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं। अचल माने क्या है बोलो संजीव, जीवो ही तावत कृमि नैमात परिणाम ऋतुपद मानो जीव ये, इसका नाम है अचल। इसका नाम अचल क्यों है, कृमि नियमित अपने जो अनंत परिणमन है, एक समय भी बिना बदले नहीं रहेगा आत्मा, फिर भी रंच मात्र भी नहीं बदलेगा, इसका नाम है अचल। एक मिनट बदले बिना रहा नहीं, और फिर भी जीव से अजीव कभी हुआ नहीं, इसका नाम है अचल। माने अपने स्वभाव से कभी चलायमान नहीं होगा, कि कब से है, कि कब के है, क्या सवाल है, अनादि है, अनंत है, अचल है, ऐसा ये आत्मा कैसे मालूम पड़ रहा है, स्वानुभूति से जो प्रकट, इस स्वानुभूति में प्रकट होने वाला है। क्यों, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, कहां मिलता है, आत्मानुभूति में तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूं, यही तो है वो आत्म सुसंवेद्य मिदम स्फुटम, वो सुसंवेद्य तत्व है, वो आत्मानुभूति में प्राप्त होता है, वो कहीं बाहर प्राप्त नहीं होने वाला है ना, वो अपने में प्राप्त होता है। जो इनका भी लक्षण बना है ना, चैतन्य लक्षण, अभी आएगी इसमें बात आएगी, अपन चर्चा विस्तार से करेंगे, अभी तो समय नहीं है, आगे आए है ना कल, अभी अभी आपने पढ़ा था कि नहीं, ये लक्षण है अव्याप्ति से रहत, अतिव्याप्ति से रहत, वो कलश आने वाला है, उस कलश में वो सब बात आएगी, कि वो भगवान आत्मा में का क्या लक्षण है, क्या उपयोग लक्षण है, तो सत लक्षण क्यों नहीं है, सत भी तो है ना आत्मा में, कि सत लक्षण जो है वो आत्मा आत्म द्रव्य का है, क्या उससे आत्मा का द्रव्यत्व तो पहचाना जाता है ना, आत्मा नहीं पहचाना जाता है, आत्मा का अस्तित्व तो पहचाना जाता है, असत माने अस्तित्व, तो अस्तित्व तो से द्रव्यत्व तो पहचाना जाता है, और उपयोग महत्व से चेतनत्व तो पहचाना जाता है। सच्चिदानंद तीन बात बोलते हैं ना भगवान, सच्चिदानंद, तो सत माने है द्रव्यत्व, चित माने आत्मत्व, और आनंद माने, ये आनंद काय को डाला है, सत तो असत से भिन्न करता है, और चित अजीव द्रव्यों से भिन्न करता है, और आनंद पर जीवों से भिन्न करता है। फिर ध्यान से सुनो, फिर क्या क्या, तो फिर सुनो, सत्य गधे के सींग से भिन्न करता है, आकाश के फूल से भिन्न करता है, चित्त अचेतन द्रव्यों से भिन्न करता है, लेकिन चेतन द्रव्यों से भिन्न नहीं करता है, क्योंकि चित्त तो मैं भी हूं और तुम भी हो, वो द्रव्य का लक्षण है, और ये उपयोग किसका लक्षण है, जीव का, और जीव मैं ही थोड़ी हूं, तुम भी तो हो, मेरे को तुमसे भिन्न नहीं करता, लेकिन जो आनंद है आनंद की अनुभूति मेरी, मेरे में तुम्हारी तुम में, तो वो पर जीव से भी भिन्न करके सच्चिदानंद अपने आत्मा में लाने के लिए, अथवा आनंद की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वे सुख चाहे और दुखते भयवंत, इसलिए तीन चीजें उनने पकड़ी। सत द्रिव्यत्व चाहिए, उसका अस्थि होनी चाहिए, चित्त स्वभावाय भावाय, और फिर के स्वानुभूत्या चकास्ते, के स्वानुभूति में वो प्रकाशित होता है। जगमगात अत्यंत, वो चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा तो जगमगा रहा है, वो अनुभूति में दिखाई देगा, वो तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर दिखाई नहीं देगा, ऐसा भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं।